नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कुआलालंपुर में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अरुणोदय ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का दूसरा एडिशन ईटानगर में संपन्न हुआ। इसमें भारत और पड़ोसी देशों भूटान, नेपाल और श्रीलंका के 3000 गेमर्स ने हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी ने ओमन के सलाला में अपना पहला पड़ाव पूरा किया। पूर्व जल संसाधन मंत्री और आवामी लीग के वरिष्ठ नेता रमेश चंद्र सेन की दिनाजपुर जिला जेल की हिरासत में मौत हो गई। दिल्ली सरकार ने आज 500 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पानीपत बस सेवा शुरू की। मेघालय में थांगस्को क्षेत्र के मयंग संगठन में खदान विस्फोट के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अपने पहले मैच में भारत ने अमेरिका को 29 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने तथा आर्थिक और नवाचार साझेदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वार्ता के दौरान आपदा प्रबंधन, ऑडियो विजुअल सहनिर्माण, भ्रष्टाचार निवारण और रोकथाम, सेमीकंडक्टर विकास और सुरक्षा सहित कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद विरोधी गतिविधियों, खुफिया जानकारी साझा करने, समुद्री सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच सहयोग बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि ऊर्जा अवसंरचना, विनिर्माण और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है, आतंकवाद पर कोई दोहरा मानदंड नहीं हो सकता और आतंकवाद से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा अवसंरचना, विनिर्माण और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग गहराएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री पड़ोसी होने के नाते भारत और मलेशिया के बीच एक विशेष संबंध है। उन्होंने मजबूत जनसंबंधों और मलेशिया में प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने मलेशिया में तमिल भाषा सहित सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज हस्ताक्षरित ऑडियो विजुअल समझौता विशेष रूप से तमिल फिल्मों और संगीत के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। उन्होंने युवाओं के लिए शुरू की गई पहलों का भी उल्लेख किया। इनमें विश्वविद्यालय आदान प्रदान, कौशल विकास और स्टार्टअप कार्यक्रम शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश जल्द से जल्द आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा संपन्न करने पर सहमत हुए। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र विकास के एक इंजन के रूप में उभर रहा है। भारत और मलेशिया क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। उन्होंने अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले आजाद हिंद फौज के पूर्व सैनिकों और मलेशिया के गणमान्य व्यक्तियों से भी भेंट की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। डॉ जाकिर हुसैन ने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था। अरुणोदय ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का दूसरा एडिशन शनिवार को संपन्न हो गया। यह चैंपियनशिप ईटानगर के होटल ऑब्सिडियन ब्लू में शानदार तरीके से संपन्न हुई, जो इस चैंपियनशिप का होस्ट था और उसने गेमिंग ऑर्किड भी उपलब्ध कराया। ये चैंपियनशिप आखिरकार एक इंटरनेशनल इवेंट बन गई है, क्योंकि इसमें भारत और भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के लगभग 300 गेमर्स ने हिस्सा लिया। ओपन कैटेगरी में लगभग 528 टीमों ने ऑनलाइन गेम्स में हिस्सा लिया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की एक खास कैटेगरी भी थी, जिसमें 128 टीमें आपस में मुकाबला कर रही थी। भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण पोर्ट INS सुदर्शनी ने ओमान के सलाला में अपना पहला पड़ाव पूरा किया। यह यात्रा भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक समुद्री संबंधों को उजागर करती है और दोनों नौसेनाओं के बीच बने सेतु की मित्रता को मजबूत करती है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा पोत की महत्वाकांक्षी 10 महीने की समुद्री यात्रा लोकायान 26 में 1 मील का पत्थर है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और वसुदेव कुटुम्बम के आदर्शों को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना है। पूर्व जल संसाधन मंत्री और आवामी लीग के वरिष्ठ नेता रमेश चंद्र सेन की दिनाजपुर जिला जेल की हिरासत में मौत हो गई है। इसमें बुजुर्ग कैदियों के इलाज और चिकित्सा देखभाल पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। वे 85 साल के थे। जेल और अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि कल सुबह जेल के अंदर सेन की हालत बिगड़ गई। उन्होंने सुबह करीब 9:30 पर दिनाजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपात विभाग में ले जाया गया और सिर्फ 19 मिनट बाद 9:29 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दिनाजपुर जिला जेल के सुपरिंटेंडेंट फरहाद सरकार ने मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने यह साफ नहीं किया कि सेन नियमित चिकित्सा देखरेख में थे या हिरासत में उनकी हालत इतनी तेजी से क्यों बिगड़ी। ठाकुर गांव एक सदर से 5 बार सांसद रहे सेन को 5 अगस्त की राजनीतिक उथल पुथल के बाद दर्ज मामलों के सिलसिले में 16 अगस्त 2026 को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। अस्पताल के अधिकारियों और आवामी लीग के नेताओं ने कहा कि सेन लंबे समय से उम्र से संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे। गिरफ्तारी के समय भी उनकी सेहत खराब थी। इस कारण एक बीमार बुजुर्ग को जेल में रखने के फैसले और हिरासत में उन्हें दी गई चिकित्सा देखभाल की पर्याप्तता पर आलोचना हो रही थी। दिल्ली सरकार ने आज 500 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पानीपत बस सेवा शुरू की। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बसों की कुल संख्या अब 4000 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2028 तक बसों की संख्या बढ़ाकर 14000 करने का लक्ष्य रखा है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में जल्द ही एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की जाएगी। इस अवसर पर दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि 18 वर्षों के अंतराल के बाद दिल्ली सरकार ने अंतर्राज्य बस सेवाओं को पुनः आरम्भ किया है, जिसमें पड़ोसी राज्यों की यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। आधिकारिक तौर पर ओपन मास्टर्स गेम्स आबूधाबी 2026 के नाम से चर्चित आबूधाबी मास्टर्स 2026 को शुरू हो गया है। यह पश्चिम एशिया में आयोजित होने वाला पहला मास्टर्स मल्टी स्पोर्ट गेम्स है। यह इवेंट 30 साल और इससे ज्यादा उम्र के एथलीटों के लिए समर्पित है। आबूधाबी मास्टर्स 2026 जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में एक सोल्ड आउट उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। यह 10 दिवसीय आयोजन 92 से ज्यादा देशों के 25,000 से ज्यादा प्रतिस्पर्धियों को आकर्षित कर रहा है। इससे आबूधाबी अल एन और अल दफरा एथलेटिक जोश और सांस्कृतिक उत्सव के केंद्र बन गए हैं। ओपन मास्टर्स गेम्स आबूधाबी 2026 मास्टर्स खेलों की दुनिया में एक सच में अनोखा आयोजन है। क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड लागू करने वाले पारंपरिक वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स के विपरीत यह संस्करण पूरी तरह से समावेशी ओपन फॉर्मेट पेश करता है। इसमें प्रवेश के लिए कोई बाधा नहीं है। इसमें 30 या उससे अधिक उम्र की सभी क्षमताओं, कौशल स्तरों और अन्य पृष्ठभूमि वाले एथलीट शामिल हो सकते हैं। इन गेम्स ने 13 खास पैरा स्पोर्ट्स कैटेगरी को शामिल करके एक क्षेत्रीय मिसाल भी कायम की। एक खास सांस्कृतिक आयाम देते हुए यह प्रोग्राम इंटरनेशनल ओलंपिक स्टाइल खेलों को 6 असली अमीराती विरासत खेलों के साथ शामिल करता है। इसमें ऊंट डोर, बाज पालना, धो नाव चलाना, एंड्योरेंस गुरदौर, अल्तबा और पारंपरिक डाइविंग शामिल है। ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा और स्थानीय परंपरा का एक अनोखा मेल बनाते हैं। ये इवेंट एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, पैडल और सेवनेस साइड फुटबॉल जैसे खेलों में महिलाओं के लिए खास कैटेगरी के जरिए समावेशिता पर अधिक जोर देता है। 20 खेलों में प्रतिस्पर्धाएं 7 फरवरी को शुरू हुई। पूरा कार्यक्रम 14 फरवरी तक चलेगा और 15 फरवरी को हुदेरी द्वीप पर एक विदाई समारोह के साथ समाप्त होगा। मेघालय में तांगस्को क्षेत्र के मनसंगत में खदान विस्फोट के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF, राज्य आपदा मोचन बल SDRF, विशेष बचाव दल SRT, जिला पुलिस और प्रशासन की टीम इस अभियान में लगी हुई है। कल 2 और शव बरामद होने के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। इस बीच प्रभावित खदान स्थलों पर तलाशी अभियान का काम जारी है। पूर्वी जयंतिया हिल्स जिला प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।